एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही क्या कहते हैं प्रभावशाली किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं, पुअर चार्लीज अल्मनैक। ये चार्ली मंगर के जो विचार हैं उनका एक संग्रह है। मैं हूँ आपका साथी मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी साथी मेजबान। तो सवाल उठता है, यही किताब क्यों? देखिए, आज की दुनिया कितनी तेज, कितनी उलझी हुई है ना, और हम सब चाहते हैं कि थोड़े बेहतर फैसले ले पाएं।
बिल्कुल।
ये किताब ना वो संकरी सोच से बाहर निकालती है, एक ज्यादा साफ, ज्यादा असरदार तरीका बताती है सोचने का। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि चीजों को सच में समझना।
एकदम सही कहा। और इसे समझने के लिए ना मुझे लगता है पहले चार्ली मंगर को थोड़ा जानना जरूरी है। 1924 में जन्मे और हाल ही में 2023 में गुजरे। ज्यादातर लोग तो उन्हें वॉरेन बफे के राइट हैंड मैन, बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन, बस इसी रूप में जानते हैं।
हाँ, पर वो इससे कहीं ज्यादा थे। आप उन्हें एक तरह से विचारों का आर्किटेक्ट कह सकती हैं।
उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है।
हाँ, बताइए ना थोड़ा।
देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मौसम विज्ञानी थे, फिर कमाल की बात, बिना अंडर ग्रेजुएट डिग्री के हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन, वकील बने, फिर रियल एस्टेट में हाथ आजमाया, सफल भी हुए और उसके बाद बने निवेशक। गणित, भौतिकी, इन सब में भी गहरी रुचि थी।
बाप रे, इतनी सारी चीजें।
हाँ, और यही विविधता उनके नजरिए को खास बनाती है। वो किसी एक दायरे में बंधे नहीं थे।
बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि वो इस किताब के जो मूल विचार हैं उनके लिए एकदम सही व्यक्ति हैं। पहली बात तो ये कि कोरी थ्योरी नहीं दी उन्होंने, असल दुनिया में जबरदस्त कामयाबी हासिल की।
वो बर्कशायर हैथवे का उदाहरण सबके सामने है।
हाँ, वो तो है।
और दूसरी बात, अलग अलग फील्ड्स का ज्ञान, जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इन सबको वो जोड़कर देखते थे। ये कमाल की क्षमता थी उनमें। सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान, वो था उनके पास।
और उनकी ईमानदारी, बौद्धिक कठोरता और वो हमेशा सीखते रहने की आदत, वो भी काफी मशहूर थी।
बिल्कुल। तो अब आते हैं किताब पर, पुअर चार्लीज अल्मनैक। जैसा आपने कहा, ये मंगर ने खुद नहीं लिखी है।
हाँ, ये पीटर कॉफमैन है, उन्होंने एडिट किया है। उनके जो भाषण थे, लेख थे, उन सब का ये संग्रह है। और नाम भी बड़ा मजेदार है, बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक तरह की श्रद्धांजलि है ये।
अच्छा।
ये कोई सीधी साधी ऐसे करें वैसे करें वाली गाइड बुक नहीं है, ये तो सोचने के औजारों का एक खजाना है, कह सकते हैं।
और इस खजाने का मतलब किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि सच्ची सांसारिक बुद्धिमत्ता, या जिसे वो वर्ल्डली विजडम कहते हैं, वो किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने से नहीं आती। वो आती है अलग अलग जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मूल अवधारणाएं हैं, जिन्हें मंगर मेंटल मॉडल या मेंटल मॉडल्स कहते हैं, उनको समझने और उनको इस्तेमाल करने से।
हाँ, उनका तर्क ये है कि दुनिया जो है ना वो एक जटिल जाल की तरह है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, तो अगर हमें इसे समझना है तो हमारे दिमाग में भी अलग अलग मॉडल्स का एक जाल होना चाहिए, जिसे वो कहते हैं लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स।
लैटिस वर्क मतलब जाली जैसा कुछ?
हाँ बिल्कुल, एक ढांचा जिसमें अलग अलग विचार जुड़े हों, वरना क्या होता है, हम वो हथौड़े वाले आदमी बन जाते हैं जिसे हर प्रॉब्लम कील ही नजर आती है। ये किताब इसी तरह की संकरी सोच और हमारी अपनी जो सोचने की गलतियां हैं, जो तर्कहीनता है, उसका एक तरह से इलाज बताती है।
तो इसका मतलब ये सिर्फ निवेशकों या बिजनेस वालों के लिए नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो सोचने का, सीखने का और कहूँ तो बेहतर जीने का एक तरीका है। कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, पेरेंट हो, कोई भी जो जिंदगी में बेहतर चॉइस बनाना चाहता है उसके लिए है ये। दिमाग के लिए एक तरह की कसरत है ये।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं दिमागी कसरत। मंगर का जो सबसे बड़ा आइडिया माना जाता है वो यही है, मानसिक मॉडलों का जाल, लैटिस वर्क ऑफ मेंटल मॉडल्स। आप कह रही थी कि ये बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि असल जिंदगी जो है वो यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह बटी हुई नहीं होती है, है ना? कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक्स की या सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं होती, वो मिली जुली होती है।
हाँ, ये तो है।
तो अगर आप सिर्फ एक ही चश्मे से देखेंगे तो पूरी तस्वीर कैसे दिखेगी? मंगर कहते हैं कि जो बड़े विषय हैं उनके बड़े आइडियाज को समझो और फिर उन्हें मिलाना सीखो, यही है कुंजी।
अच्छा, तो कुछ उदाहरण दे सकती हैं इन मानसिक मॉडलों के, मतलब कौन से बड़े आइडियाज की बात कर रहे हैं वो?
बिल्कुल, जैसे मान लीजिए गणित से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग। अब ये सब पैसों पर ही नहीं लगता, सोचिए ज्ञान कैसे बढ़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और वो जुड़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
हाँ, सही बात है।
रिश्ते कैसे गहरे होते हैं, लगातार कोशिशों से, समय देने से, ये भी तो कंपाउंडिंग ही है। या फिर इंजीनियरिंग से एक सिद्धांत है, सुरक्षा का मार्जिन,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
मतलब हमेशा थोड़ी गुंजाइश लेकर चलो।
जैसे वो पुल बनाते वक्त इंजीनियर सोचते हैं कि अगर अंदाजे से ज्यादा लोड आ गया तो।
बिल्कुल, वैसी ही सेफ्टी हमें जिंदगी के फैसलों में भी रखनी चाहिए, थोड़ा बफर।
ये तो सुनने में रोजमर्रा की बात लग रही है, लेकिन इसे एक मॉडल की तरह देखना ये थोड़ा नया है। और कोई उदाहरण?
जैसे जीव विज्ञान से विकासवाद, एवोल्यूशन। अब ये सिर्फ डार्विन की थ्योरी नहीं है। आप बाजार को देखिए, कौन सी कंपनियां टिक पाती हैं, वही जो बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। ये बिजनेस की दुनिया में एवोल्यूशन ही तो काम कर रहा है। या फिर मनोविज्ञान से ले लीजिए, प्रोत्साहन का प्रभाव, पावर ऑफ इंसेंटिव्स। लोग कोई काम क्यों करते हैं या क्यों नहीं करते, अक्सर इसका जवाब इस बात में छुपा होता है कि उन्हें उस काम को करने या न करने का इंसेंटिव क्या मिल रहा है।
और सबसे जरूरी बात, जैसा आपने शुरू में कहा कि इन मॉडल्स को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखना है, इनको एक साथ एक जाल या लैटिस वर्क की तरह इस्तेमाल करना है।
हाँ,
जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस फैसला लेना है, तो आप एक ही समय में कंपाउंडिंग की लंबे समय में क्या फायदा होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि इसमें जोखिम कितना है, सेफ्टी कितनी है, और इंसेंटिव्स कि इससे कर्मचारियों पर या ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, इन सब मॉडल्स को लगाकर सोच सकते हैं।
बिल्कुल सही, यही है उस लैटिस वर्क का असली जादू। अब आते हैं मंगर के एक और बहुत बहुत जरूरी हिस्से पर, जिसे वो शायद सबसे ज्यादा महत्व देते थे। वो है मानवीय गलत निर्णयों का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट। आपको क्या लगता है ये इतना जरूरी क्यों मानते थे वो इसे?
मुझे लगता है इसलिए क्योंकि ये समझना कि हम इंसान सोचने में कहां कहां और कैसे कैसे गड़बड़ करते हैं, ये खुद को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम है, है ना? अगर हमें अपनी कमजोरियां, अपनी सोचने की ढलाने ही नहीं पता होंगी, तो हम उन्हें ठीक कैसे करेंगे?
सही बात है। मंगर ने करीब 25 ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों या कह लीजिए सोच की गड़बड़ियों, कॉग्निटिव बायसेस की बात की है, जो हमसे अनजाने में ही गलत फैसले करवा देती हैं।
25? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या हम कुछ मुख्य उदाहरणों पर बात कर सकते हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा दिखते हों? हाँ हाँ, 25 की पूरी लिस्ट तो याद रखना मुश्किल है और शायद जरूरी भी नहीं, लेकिन कुछ बड़े वाले समझना बहुत काम का है। पहला है इनाम और सजा सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी। मंगर का वो मशहूर कोट है ना, मुझे इंसेंटिव दिखाओ और मैं तुम्हें नतीजा दिखाऊंगा।
हाँ, सुना है।
लोग इंसेंटिव्स यानी फायदे और सजा के प्रति बहुत जोरदार रिएक्शन देते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल अजीब तरीकों से। सोचिए, सेल्स का टारगेट पूरा करने के लिए लोग क्या क्या जुगाड़ने लगा लेते हैं।
हाँ, ये तो देखा है मैंने भी। और दूसरा
जो बहुत कॉमन है वो है पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम उन बातों, उन सबूतों को ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा ढूंढते भी हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती हूँ।
अच्छा।
हाँ, जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई खास नेता अच्छा है, तो हम सिर्फ उसके अच्छे कामों की खबरें पढ़ेंगे या उन पर ज्यादा यकीन करेंगे, और जो उसकी आलोचना वाली खबरें होंगी उन्हें या तो नजरअंदाज कर देंगे या शक की नजर से देखेंगे। सोशल मीडिया पर तो ये रोज दिखता है।
उफ, ये तो सच में बहुत आम है, लगता हम सब थोड़ा थोड़ा तो करते ही हैं ये। तीसरा कौन सा है?
तीसरा है सामाजिक प्रमाण प्रवृत्ति,
सोशल प्रूफ टेंडेंसी।
मतलब जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है या क्या सोचना सही है, तो हम ये देखते हैं कि बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं और हम भी वही करने लगते हैं।
भेड़ चाल जिसे कहते हैं।
हाँ बिल्कुल, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो सही होगा। सोचिए, आप किसी अनजान शहर में गए और आपको खाना खाना है, आप अक्सर किस रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसमें ज्यादा भीड़ दिख रही हो, है ना? ये सोशल प्रूफ ही है।
ये तो बहुत सच बात कही आपने। अच्छा, और जब ये सब चीजें, ये सारे बायस एक साथ मिल जाते हैं, तब क्या होता है?
मंगर का उसके लिए भी एक खास शब्द था शायद। हाँ, वो कहते थे लौला पालूजा प्रवृत्ति या लौला पालूजा टेंडेंसी। ये बड़ा मजेदार शब्द है। ये तब होता है जब कई सारे पूर्वाग्रह एक ही दिशा में काम करने लगते हैं और मिलकर एक बहुत बड़ा, बहुत जोरदार असर पैदा करते हैं, जो अक्सर बेतुका या एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है।
जैसे
शेयर बाजार का कोई बबल बनता है और फिर फटता है। उसमें देखिए लालच भी होता है, देखा देखी भी होती है, अपनी राय को सही मानने की जिद भी होती है। ये सब चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं और नतीजा जबरदस्त उछाल और फिर जबरदस्त गिरावट। ये किसी एक अकेले बायस से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है।
बाप रे, ये जानना कि हम सोचने में इतनी सारी गलतियां कर सकते हैं थोड़ा डरावना भी लगता है, पर हाँ, जागरूकता शायद पहला कदम है। अच्छा मंगर, एक और बड़ा दिलचस्प तरीका बताते हैं समस्याओं को देखने का, व्युत्क्रम।
इन्वर्जन।
ये क्या चीज है?
इसका मतलब है किसी प्रॉब्लम को सीधा हल करने की कोशिश करने के बजाय उसे उल्टा करके सोचना।
उल्टा करके मतलब?
मतलब ये सोचने के बजाय कि मुझे सफल कैसे होना है, ये सोचिए कि मैं पक्का असफल कैसे हो सकता हूँ, या वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देंगी।
मंगर का एक कोट है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ ताकि मैं वहाँ कभी ना जाऊँ।
ये तो बढ़िया है। मतलब अच्छा करने पर फोकस करने से ज्यादा जरूरी है बुरा करने से बचना।
कई बार हाँ, खासकर जब मामला जटिल हो, ये मुश्किल चीजों को आसान बना देता है। जैसे मान लीजिए आपको एक शानदार पार्टी देनी है, अब ये सोचना कि क्या क्या करूं कि सब लोग बहुत खुश हों, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
हाँ।
इसकी बजाय उल्टा सोचिए, क्या क्या हो सकता है जिससे पार्टी एकदम फ्लॉप हो जाए। शायद खाना खराब हो, म्यूजिक बहुत बुरा हो, बैठने की जगह गंदी हो, मेहमानों में झगड़ा हो जाए। अब बस इन चीजों को होने से रोक लीजिए, पार्टी अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी।
वाह, ये तो कमाल की तरकीब है। हाँ, मंगर के शब्दों के, लगातार बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करने के बजाय लगातार मूर्ख न बनने की कोशिश करके हमने ज्यादा फायदा उठाया है। और ये जो कन्फर्मेशन बायस जैसी चीजें हैं ना, उनसे बचने में भी ये तरीका मदद करता है।
बहुत खूब। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है उनका जिसका जिक्र आता है, योग्यता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये क्या है?
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी हद पहचानना, ये जानना कि आप क्या चीजें अच्छी तरह समझते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना कि आप क्या चीजें नहीं समझते हैं। मंगर कहते हैं कि आपका ये दायरा कितना बड़ा है ये उतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उसकी सीमाओं को कितनी अच्छी तरह जानते हैं और आप उनके अंदर ही रहें, उन चीजों में अपना पैसा या वक्त ना लगाएं जिनकी आपको गहरी समझ नहीं है।
जैसे
अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं तो उसी फील्ड की कंपनियों में निवेश करें। जरूरी नहीं कि आप तेल के कुओं के बारे में या खेती के बारे में भी एक्सपर्ट बने, बस ये जानें कि आपका तालाब कौन सा है और उसी में मछली पकड़ें। अपनी लिमिट्स जानना और उन्हें मानना।
ठीक है, तो अगर हम इन सारे बड़े विचारों का सार निकालें, निचोड़ निकालें, तो इस किताब से 3-4 सबसे बड़े सबक या संदेश क्या होंगे आपके हिसाब से?
मेरे लिए पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि बहुविषयक सोच, मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग, अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये एक जरूरत है। दुनिया की समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें सुलझाने के लिए आपको कई तरह के औजारों की, कई नजरियों की जरूरत पड़ेगी ही।
सही बात है।
दूसरा, ये जो मानसिक मॉडल है ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सोचने के असली प्रैक्टिकल औजार हैं, इन्हें सीखना और इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरा, हमारी अपनी सोच की जो गड़बड़ियां हैं, वो कॉग्निटिव बायसेस, वो सच में बड़ी बाधाएं हैं। तर्कसंगत यानी रैशनल होने के लिए उन्हें पहचानना और उनसे निपटना सीखना ही होगा।
और चौथा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, वो है लगातार सीखते रहने का आइडिया। ये कोई अंत वाली चीज नहीं है। मंगर खुद कहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा जो हर समय कुछ ना कुछ पढ़ता ना हो, एक भी नहीं।
बिल्कुल, और इन बातों को हम अपने आसपास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं, है ना?
हाँ, कैसे?
जैसे आप भारत में देखिए, जो फैमिली बिजनेस होते हैं उनमें भरोसे की, जिसे मंगर अर्जित विश्वास कहते हैं, उसकी कितनी ज्यादा अहमियत होती है। या फिर कई बार हम देखते हैं कि शादी या करियर जैसे बड़े फैसले कैसे सामाजिक दबाव में यानी सोशल प्रूफ के चक्कर में ले लिए जाते हैं।
हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला फैक्टर।
बिल्कुल, और हमारी शिक्षा प्रणाली को ही देख लीजिए, अक्सर वो किसी एक विषय में बहुत गहराई तक जाने पर जोर देती है, स्पेशलाइजेशन पर, जबकि मंगर कहते हैं कि थोड़ी चौतरफा जानकारी, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव ज्यादा जरूरी है।
हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, ये किताब कुछ बेहतरीन कोट्स, कुछ यादगार पंक्तियों से भी भरी पड़ी है, कुछ याद आ रही हैं अभी?
हाँ, कई सारी हैं। एक तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मेरा मानना है कि दूसरों ने जो सबसे अच्छा समझा है उसमें महारत हासिल करने के अनुशासन में विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ बैठकर खुद ही सब कुछ सोचने में विश्वास नहीं करता। कितनी विनम्रता है इस बात में, मतलब सीखने के लिए तैयार रहो, दूसरों के ज्ञान का फायदा उठाओ, खुद को ही सबसे अकलमंद मत समझो।
वाह, ये बहुत अच्छा है। और एक वो लैटिस वर्क वाली बात से जुड़ी हुई थी शायद।
हाँ, ये वाली। पहला नियम ये है कि आप वास्तव में कुछ भी नहीं जान सकते यदि आप केवल अलग थलग तथ्यों को याद करते हैं। यदि तथ्य सिद्धांत के जाल पर एक साथ नहीं टिकते हैं तो आपके पास वे प्रयोग करने योग्य रूप में नहीं है। वही बात है, ज्ञान को सिर्फ रटना काफी नहीं है, उसे जोड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है कि चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं।
और एक वो गलती ना करने वाली,
वो तो क्लासिक है। ये उल्लेखनीय है कि हम जैसे लोगों ने लगातार बहुत बुद्धिमान होने की कोशिश करने के बजाय लगातार मूर्ख ना बनने की कोशिश करके कितना दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया है। ये इन्वर्जन का सिद्धांत और गलतियों से बचने की ताकत दोनों को दिखाता है। कम गलतियां करना भी एक तरह की बुद्धिमानी है।
सच में ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब महान विचारों को हम अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? क्या कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं?
हाँ बिल्कुल है, और ये उतने मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। जैसे कोई बड़ा फैसला लेना है, मान लीजिए नौकरी बदलनी है या घर खरीदना है या शादी करनी है, तो एक मिनट रुकिए और मंगर की वो बायस वाली लिस्ट दिमाग में लाइए। सोचिए कहीं आप कन्फर्मेशन बायस का शिकार तो नहीं हो रहे, मतलब सिर्फ वही बातें सुन रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, या कहीं लाइकिंग टेंडेंसी काम कर रही है, किसी को पसंद करने की वजह से उसकी सलाह पर ज्यादा भरोसा तो नहीं कर रहे। इन्वर्जन का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए ये फैसला बुरी तरह से खराब कैसे साबित हो सकता है, क्या क्या गड़बड़ हो सकती है।
हाँ, ये चेकलिस्ट की तरह काम कर सकता है, और काम की जगह पे, ऑफिस में।
काम पर मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, तो सिर्फ अपने फील्ड के एक्सपर्ट की तरह मत सोचिए, सोचिए क्या यहाँ इंजीनियरिंग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला आइडिया लग सकता है, क्या टीम में लोगों के इंसेंटिव्स ठीक तरह से अलाइंड हैं। अलग अलग मॉडल लगाकर प्रॉब्लम को देखने की कोशिश कीजिए, और सीखने में सिर्फ अपनी फील्ड की किताबें या आर्टिकल्स मत पढ़िए। कभी साइकोलॉजी पर कुछ पढ़ लिया, कभी इतिहास पर, कभी बायोलॉजी पर, ये दिमाग के लिए क्रॉस ट्रेनिंग की तरह है, यह आपके सोचने का दायरा बढ़ाता है।
हाँ ये बढ़िया आइडिया है। जैसे मान लीजिए आप किसी जरूरी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने पॉइंट्स रटने के बजाय एक बार इन्वर्जन करके सोचें, ये मीटिंग फ्लॉप कैसे हो सकती है, या सामने वाले के नजरिए से सोचें उसके क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं, कौन से पूर्वाग्रह उसकी सोच पर असर डाल सकते हैं।
बिल्कुल।
या मान लीजिए ऑनलाइन कोई खबर पढ़ रहे हैं, तो रुक कर सोचें क्या ये सिर्फ मेरी पहले से बनी राय को ही मजबूत कर रही है, कन्फर्मेशन बायस, क्या इसे बढ़ा चढ़ाकर सेंसेशनल बनाकर पेश किया गया है।
एकदम सही, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, रोज के फैसलों को थोड़ा धीमा करके थोड़ा सोच समझ कर लेना। बात सिर्फ इन मॉडल्स को जानने की नहीं है, बल्कि उन्हें असल में इस्तेमाल करने की है।
तो आखिर में इस पूरी चर्चा से, इस किताब से सबसे कीमती सबक क्या मिलता है? मेरे लिए शायद ये है कि जो असाधारण नतीजे होते हैं ना, वो सिर्फ तेज दिमाग या IQ से नहीं आते, वो आते हैं सही सोचने के तरीकों को, उन मौलिक सिद्धांतों को लगातार और अनुशासन के साथ अपनाने से। समझदारी जो है वो सीखी जा सकती है, वो कोई पैदाइशी खूबी नहीं है जिसे बदलाना जा सके।
और मैं कहूंगा कि सुनने वालों के लिए टेक अवे ये हो सकता है कि अपनी सोच को बेहतर बनाना, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सुधारना शायद जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। दुनिया बहुत जटिल है, उसे समझने के लिए आपको कई अलग अलग चश्मों की यानी मानसिक मॉडलों की जरूरत है। ये किताब वाकई दिमाग के ताले खोलने वाली एक प्रैक्टिकल गाइड है।
इस पूरी बातचीत में मेरे लिए जो सबसे कमाल की बात रही वो ये देखना था कि कैसे अलग अलग विषयों के आइडियाज को, जो बिल्कुल अलग लगते हैं, मंगर ने उन्हें कैसे जोड़ा, एक धागे में पिरोया। ये दिखाता है कि ज्ञान जो है वो असल में कितना इंटरकनेक्टेड है।
और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया उस मनोविज्ञान वाले हिस्से ने, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट, ये जानना कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से सोचने में कहां कहां चूक कर जाते हैं, ये आपको थोड़ा विनम्र बनाता है, खुद की गलतियों को स्वीकार करना सिखाता है, और ये एक उम्मीद भी जगाता है कि अगर हम अपनी सोच की इन कमियों को समझ लें तो हम कितने बेहतर फैसले ले सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।